رشید ایرانی صاحب آیا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم. شیخ کرام, بزرگو, دوستو, علماء فضلاء, آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے بڑی جھجک اور بڑے دل ساتھ نہیں دے رہا کہ ہم ایک کم علم اور فوجی آدمی ہیں. حضرت کبھی کبھی فرمایا کرتے ہیں فوجی آدمی ککھ نہیں جان رہا. وہ ککھ نہیں جاننے والوں میں سے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ ہمیں پکڑ بیٹھے اور کوئی فتویٰ صادر فرما دیں. اس لیے گستاخی کی معافی کے طلبگار ہیں. واقعات اور کمالات اور حالات تو ہم بتا چکے ہیں, سنا چکے ہیں, کافی دفعہ لکھ چکے ہیں قید کے, لیکن آج میرے ذہن پر تھوڑا سا وہاں کے قید کے احساسات اور تاثرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے پرسوں چوتھ فرمایا تھا, پرسوں بیان میں, کہ کسی آدمی سے کوئی نیک کام صادر ہو جائے یا کسی ماں باپ کی دعا اسے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے خوش ہوتی ہے, اور خوشی میں اس خوشی میں اسے اس کے ماحول سے اٹھا کر کوئی ذاکرین کے ماحول میں لے جا پہنچا دیتی ہے اللہ کی ذات, اور اس کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تو یہ ان ذکر والوں میں شامل ہو کے میرا ذکر کر اس کام کے بدلے میں جو تو نے نیک کام کیا تھا. جب تو میرا ذکر کرے گا تو پھر میں تیرا ذکر کروں گا, یعنی تجھے تیری فلاح کا سبب بن جاؤں گا, سارے معاملات کو درست کرنے کا اوپر میں قادر ہوں. تو یہ ہم سب کو, پھر میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ حضرت نے یہ فرمان جاری کیا تھا, اس پر دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی نیکی ہونی چاہیے, مخفی نیکی ہونی چاہیے, اعلانیہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ ہی رہی ہے مخفی سے مخفی, اور وہ پھر خود راستہ کھول دے گی. تو یہ راستے پھر یہ نہیں کہے گا کتنے لکھا ہے, پھر اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ ذکر کیا چیز ہے. نیکی کرنے سے وہ مقبول کرتا ہے, اور مقبول قبول ہوتا ہے تو پھر یہ راستے خود کھولتا ہے. تو اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے موسوی فیض ملا ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت پڑی تو تلاش کرتے ہوئے آگ ہی نہیں تھی بلکہ وہ فیض یاب ہی ہو گئی. تو مجھے بیلوں کی تلاش کرنے کی ضرورت پڑی تو میں بیل تلاش کرنے کے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چشمہ اویسیہ کے اوپر تعینات فرما دیا. اویسی سدرے کا فیض کا مجھے سرچارج انچارج بنا دیا. اس لیے حضرت نے جب یہ فیض 16 سال اور 24 سال میں سننے میں حضرت فرماتے ہیں 24 سال میں فیض مکمل ہوا, اور حضرت نے پھر یہ اپنا مشن جاری فرمایا, اور یہ مشن جو آپ کو اویسیا فیض ملا ہے یہ سابقہ ریکارڈ کو ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ان سے کہیں گنا بڑا.
گستاخی معاف, وہ بیل کیسے ڈھونڈنے
گئے؟ یہ بڑا لمبا ہے, یہ بڑا لمبا, ایک نیا سبجیکٹ چل پڑے گا. حضرت نے مجھے اختصار کا حکم فرمایا ہے, حضرت ابھی سنائیں گے, آگے جائیں گے حضرت سنائیں گے. یہ وہاں اسی لیے جا رہے ہیں تو اس لیے میں نے کہا مختصر رکھتا ہوں. تو وہ حضرت نے جب وہ سلسلہ شروع کیا تو ان کا اصل میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تاریخ میں جتنے پیچھے سے چلے جائیں اویسیہ سلسلہ ہر دور میں رہا ہے, اور کبھی نہیں بھی ہوا تو زیر زمین چلا گیا ہے, پھر آیا ہے, پھر زیر نکلا ہے, پھر سیراب کیا ہے اس نے. جتنے اولیاء کرام ہیں وہ اویسی سلسلے کے اکثر ہندوستان میں بہت اس میں اثر رہا ہے. حضرت بدیع الدین مدار صاحب جی ہیں بڑے کبائر میں سے ہیں, وہ ان کو بھی اویسی فیض ملا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ اس اویسی سے فیض سے تھے. حضرت بایزید مستعبی رحمۃ اللہ اویسی فیض سے, ابو سعید خرکاری نے ان سے 100 سال کے مدفن سے فیض لیا. بہرحال یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سلسلہ اویسیہ کیا چیز ہے. اس کے بعد جو حضرت کو ملا ہے فیض, یہ اس کا سے اس کی وسعت کی میں اندازہ پیچھے دیکھتے ہوئے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کتنا وسیع فیض ملا ہے. اس کے لیے آپ خود ہی ججمنٹ کریں گے, آپ اس حلقے میں داخل ہو چکے ہیں کتنا بڑا فیض ملا ہے. جب حضرت نے فیض شروع کیا تو پھر فیض کا شروع ہونا اور اویسیت کے اندر داخل ہونا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے اسباب بنتے ہیں, تو یہ بات بنتی ہے, اتنا سستا نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابا من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت کوئی بلا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر یہ فیض نازل فرماتا ہے تو مصیبتیں اور پریشانیاں بھی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے سکے کہ یہ اس کو برداشت کر سکتا ہے تو اس قابل ہوتا ہے, پھر اس کے قلب کو راہ دکھاتا ہے, ورنہ راہ کے قابل نہیں ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد سلسلہ چلا ہے, ہمارے اکابرین مشائخ اس راستے میں گامزن ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت نازل کی ہے. تاریخ کا پہلو آپ سب جانتے ہیں, اتنی بڑی زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ ہمارا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک جان دو قالب بڑے پیار سے رہ رہے تھے. بس کچھ باطنی امور ہوتے ہیں, ظاہری امور کچھ ہوتے ہیں, اس میں دونوں میں ایک فساد برپا ہوا اور اتنا بڑا فساد برپا ہو کے دو ٹکڑے ہو گئے. مختصر میں آگے چل رہا ہوں تھوڑا سا, اور کسی تیسری طاقت نے ان پر غلبہ پا لیا. اور تاریخ میں یہ مثال بھی نہیں ملتی کہ اتنا بڑا مسلمان فوج پاکستان, مسلمانوں کی فوج 90,000 مسلمانوں کی فوج قید ہوئی ہو. یہ بڑے غم اندوک غم آئے ہیں, علم آئے ہیں. مشرقی پاکستان جسے بنگلہ دیش اب کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے بھائی کربلا میں بلبلا اٹھے, اتنا طوفان برسا وہاں, اتنا غم برسے ہیں وہاں, اور اس کے ساتھ پاکستان مغربی پاکستان سارا تڑپ گیا, گھر گھر میں غم کے اندھیرے چھا گئے, پریشانیاں ہو گئیں, فوج 90,000 فوج قید ہو گئی. اس کے علاوہ مشرقی پاکستان کا تو کھ نہیں رہا بےچاروں کو, ان کا بھی لٹ پٹا گیا. اور ہندوستان جو اتنی ہی نفری رکھتا ہے مسلمانوں کی جتنی ہماری ہے, اتنی ہی نفری ہندوستان میں مسلمانوں کی, وہ بھی تڑپ اٹھے. وہ کون سے خوش ہوئے, وہ بلبلا اٹھے کہ پاکستان مسلمانوں سے کیا ہو گیا, ہائے مسلمانوں سے کیا ہو گیا. گویا کہ دوسرے ممالک جتنے تھے, ملائیشیا انڈونیشیا دوسرے جتنے ممالک تھے, سب تڑپ اٹھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو گیا. اتنا بڑا المناک واقعہ, ملک کے دو ٹکڑے ہوئے, مسلمان مسلمان لڑ کر کے کربناک ایک دور میں داخل ہو گئے. تو ہم اس کا جو گڑھ جو تھا غم کا, سب سے بڑا گڑھ قلعہ جسے کہتے ہیں, وہ ہندوستان تھا, کیونکہ 90,000 فوجی قیدی وہاں ہندوستان میں تھی. اس حضرت سرینڈر ہو چکے تھے سارے فوجی, اور ادھر حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کا حکم دے دیا. آپ نے حضرت بیگ صاحب مزی اللہ علی نے حضرت سے اجازت لی, اور حضرت جی چشمے فیض ویسیہ کے سربراہ, انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ جاؤ بھائی. حضرت آخری جہاز میں بیٹھ کر ڈھاکہ پہنچے ہیں, سیرٹ چٹاگانگ, وہاں سے اتر کے جیسے کہ سرنڈر ہو چکے تھے سارے, اور یہ آرام سے اپنی جس ذمہ دار جو ڈیوٹی اللہ نے لینی تھی اس کے تحت یہ اپنے آرام سے پہنچ کر کے, اور بہار کے صوبہ بہار کے گیا شہر میں پہنچ گئے. ہم اس سے پہلے پہنچے ہوئے تھے کچھ 2-4 دن پہلے, یہ پہنچ گئے. اور یہ گیا بہار کا جو گیا کا علاقہ ہے, یہ ویسے بھی گیا بہت بڑے تاریخی شہروں میں سے ہے اور بڑے تبرکات میں سے ہے, حضرت یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ کے علاقوں میں سے ہے جہاں انہوں نے فیض پھیلایا رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ بڑی خاص, ہندوستان ایک مرکز ہے اصل میں, اسلامیات کا اور ولایت کا سرچشمہ رہا ہے اور بڑے سے بڑے وہاں اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں. بلکہ میں نے تو آپ کے مطالعے میں آیا ہوگا کہ حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر 8 نبی بلکہ اس سے زیادہ نبی, ان 8 کی تو میں نشاندہی کر سکتا ہوں کہ کہاں کہاں مدفن ہے ان کا ہندوستان کے اندر. اور مگر وہ جب آئے تشریف لائے تو ہندو مت کا جو یہ کنٹرول تھا نا وہ اتنا سخت تھا کہ کوئی لائے لائے یا ایک خدا کہہ کے بتائے. وہ انبیاء کرم جب تشریف لائے تو انہوں نے کلمہ پڑھایا, ایک یا دو امتی ہوئے, بھائی اتنا ہوا تھا کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا, تمام انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کر دیا. یہ تاریخ ثانی اپنے مکتوبات میں لکھ رہی ہیں. تو وہ اب وہ انبیاء کرام اپنا مشن نہیں چلا سکے, اتنا سخت جال تھا ہندو مت کا. اللہ کی مرضی جیسے تھی ان کو, لیکن وہ متبرک بدن ان کے یہی وہیں مدفن ہیں. ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ گنگا کا پانی اس میں شفا کیوں ہے, لوگ کیوں اس کے اپنے گھروں میں لیتے ہیں, کیوں اس کو اپنے اتنا متبرک سمجھتی ہیں. میں دیکھوں تو صحیح, آخر اسلام ہمارا مذہب ہے, اس میں اس کی کیا اہمیت ہے کہ جو ہم قسم کھاتے ہیں نا, فوجی آدمی قسم پریڈ کھاتے ہیں, قسم پاسنگ آؤٹ ہوتے ہیں نا, تو ہمارے سامنے قرآن مجید رکھا ہوتا ہے اور ہم ایسے اشارہ کرتے ہیں, قسم ہے مجھے اس قرآن مجید کی میں ملک وفادار رہوں گا. اور ہندو کیا کرتے ہیں, گنگا جل کا پانی کیوں رکھا ہوتا ہے آگے. یعنی اتنا متبرک مانتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس گنگا کی کہ میں ملک وفادار رہوں گا. تو آپ نے وہاں یہ ریسرچ کیا کہ اس گنگا جل کے پانی میں کیا چیز شامل ہے جس کی اتنی برکات ہیں اور فیوزات ہیں اور اس کے اندر یہ شفا بھی ہے. تو فرماتے ہیں میں آہستہ آہستہ چل پڑا, چلتے 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 گنگا کے ساتھ ساتھ, تو جب وہاں پہنچے جہاں دونوں ندیاں پھٹتی ہیں ان کے درمیان جو جگہ ہے اس کے قریب میں نے کشفی طور پر اور معاملات کے مراقبائی طور پر میں نے دیکھا تو وہاں انبیاء کرام کے قبور مدفون دفن ہیں, مدفن ہیں گنگا کے کنارے, اور اوپر سے انوارات کی برسات ہو رہی ہے. وہ انوارات جب پڑتے ہیں ان کے مدفن پر تو وہ گنگا کے اوپر پڑتے ہیں اور جمنا پڑتے ہیں, دونوں کا سنگم جہاں ہے. تو میں نے کہا اللہ, یہ بھی سارے اسلام کا نور ہے, سارا پانی میں یہ برکات ان کے انبیاء کرام کے انوارات کی وجہ سے ہیں. یہ حضرت مجد اللہ صاحب رحمۃ اللہ یہ انشافات فرما رہے ہیں. تو یہ جو دھرتی ہے نا یہ ویسے بھی متبرک ہے, اور یہ جو ہمارا چناؤ ہوا ہے حضرت کی طرف سے ادھر سے اور حضرت بیگ صاحب کے روانہ کرنا, یہ چناؤ بھی بڑی تاریخی منظر میں سے ہے. اب یہ جب یہاں آ گئے حضرت پہنچ گئے گیا کے اندر, باقی لوگ پہنچ گئے ہمارے کیمپ 93 نمبر کیمپ کے اندر 3,500 نفوس تھے, فوجی سپاہی جے سی یو آفیسر ملا کے. تو 3,500 میں ہم ایسے تقسیم ہوئے تھے 8 کیجوں کے اندر, 8 کیج 8 خانے, ان کے اندر ان کو رکھا گیا. میں تو کہتا ہوں مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ جن کو یہاں جائیں انہیں رکھا گیا نا وہ بھی کوئی خاص متبرکات جگہ تھی جن کا انبیاء کرام اور اولیاء کرام میں کوئی قیام رہا ہو. بہرحال یہ کل بتایا تھا الیاس صاحب نے کہ A, B, C, D, E, F, G, H انگریزی کے لفظ ہوتے ہیں نا, اس کے اندر انہوں نے نام رکھا تھا کیجوں کا. تو یہ ایک سائڈ میں کنارے پر کیج تھا ان کا, اے پھر بی پھر سی, پھر انڈین آرمی کے آفس تھے, اس کے بعد ای ایف جی اور ایچ, یہ جو ڈی جو تھا نا یہ سینٹر میں تھا تمام کے بیچ. تو میں جب ان سے پہلے آ چکا تھا وہ کیمپ کے اندر تو میں ڈی میں تھا, ڈی کیج میں تھا. تو ادھر سے حضرت کی تھوڑے دن پھیرے تو حضرت نے اپنا مشن شروع کر دیا, گفتگو شروع کر دی, دین کی باتیں پھیلانی شروع کر دی, لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اپنی حسین اداؤں کے ساتھ. تو جو دیکھتا تھا وہ مائل ہو جاتا تھا, قیدیوں کو حوصلہ بڑھانا, ان کی دل جوئی کرنا, دین کا راستہ بتانا, اللہ کی طرف سے لگانا کہ ہم اس لیے آئے ہیں, بے فکر رہیں, ہم اللہ کے مشن پہ ہیں, ہم نے کوئی ایسی باتیں نہیں, ہم جلدی چلے جائیں, ایسی باتیں اور نماز اور روزہ اور بیان वजू का तरीका और ये पाकिस्तान सिखाना शुरू कर दी उन्होंने एक एज वालों को, कुछ और भी साथी थे पड़ोस साथ, हरिलिया साहब के करीब ही थे, बी में या सी में थे, तो इन्होंने इनकी ये एक रोशनी फैलनी शुरू हुई। तो जो भी आए ना दूसरे की बातें करें, मिलकर जाए, इनका वर्किंग के लिए जाए, इनके केज में इधर जाए सफाई वाल के लिए एरिया के, तो वो आके कहें एक मेजर साहब हैं, बहुत खूबसूरत है, हसीन है, काली दाढ़ी, और वो ऐसी बातें करते हैं ऐसे प्यार मोहब्बत की, तो आदमी जी करता देखता रह जाए। तो मैं उधर डी केज में था, तकरीबन 300-400 गज का फासला था, 200-300 गज का फासला हुआ, ऐसे एक कॉर्नर पे थे। तो अब वो आके ऐसी बातें करे, और मैं कुछ जहन चुगलखोरी का समय ले रखता था मैं पाकिस्तान इंटेलिजेंसी की तरफ से था, मैंने कहीं कान खड़े किए कि ये शख्स मी मेजर आर्मी के हैं, ये क्या क्या बातें, इन्हें ऐसी करनी नहीं चाहिए, आर्मी मिशन के हिसाब से कैद में चुपचाप रहे अपने लोगों को, लेकिन ये इन्होंने तब्दील करनी शुरू कर दी है, खुदा न खास्ता इंडिया वाले को ला लगा देंगे, एक्ट लगा देंगे इनके ऊपर, ऐसे ही मेरे दिल पे आते थे। बहरहाल इनकी बातें हम सुनते रहे, हमने कहा या अल्लाह कभी उनका हमें आना हो जाए, मिलना हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, हम उनसे मुस्तफीज हों, अच्छा मिशन है, लेकिन ये तो मुजाहिद जहाज है, ये तो दरबार फिरौनी में मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम है कि कैद में होते हुए ये तबलीग कर रहे हैं दीन की और टाइट कर रहे हैं मुसलमानों को, सिपाहियों को, कमाल की बात है। इस थोड़े दिन के बाद ईद आ गई, ईद पर उन्होंने कंसेशन दी कि कोई अपने किसी केज में जाना चाहे ना मिलने के लिए, ईद मिलन के लिए, तो वो जा सकता है। तो हजरत साहब के दिल में भी थी कि भाई मैं भी चक्कर लगाऊं बाकी केजों में मिलूं ईद के बहाने से ही, उस कंसेशन के बहाने ये हमारे केज में भी आए थे, सब में चक्कर लगाए उन्होंने, आधा घंटा हमारे केज में ठहरे, सबसे बगलगीर मिले, फिर बैठे थोड़े सी देर, फिर उन्होंने बातें की और बड़ी खूबसूरत बातें की, हमने कहा लो जी आज ज्यारत तो हो गई है, आगे देखो,
मुझे कुछ याद नहीं
अच्छा थोड़ी देर फिरने के लिए आए, वो एक आम रूटीन था ईद मिलन के लिए, तो वहां पर एक दो असल में वो जहाँ फूल वहाँ कांटे भी होते हैं, वहाँ उन्होंने कुछ तजावज भी किया इनके ऊपर, एक मौलाना अल्लामा साहब थे, मौलाना साहब थे दूसरे की देखे, उन्होंने उल्ट पुल इनसे कुछ बातें भी की, तो बहरहाल सब खामोश कर दिया उन्होंने, कि वो नहीं टलते ना, कुछ लोग ऐसी मुझे शराज की वगैरह, अगर चले गए तो ले गए। हमने कहा या अल्लाह ये इनके तो कुर्बत और सोबत मिलनी चाहिए, हम सबको मिलनी चाहिए, बरे वल्लाहु ग़ालिबुन अला अमरिही वला किन्ना अक्सर नासे ला यालमून, अल्लाह अपने कामों पर खुद मुख्तार है, वो जो चाहे वो करता है, और इसलिए दुआएं होती रही, सबको इन्होंने अपना दीदार करा दिया, मिल भी गए, अखलाक भी, और सारी चीजें सुना, तो सब लोग कहते हैं या अल्लाह ये अस्तित्व हमें करीब करीब होने चाहिए हमारे। तो हमने कुछ अरसे बाद देखा अल्लाह ने इसका रुख मोड़ दिया, उस बात का रुख ऐसे मोड़ा कि रांची एक शहर है, रांची है ना हिंदुस्तान में जानते सारे, रांची हमारे से कुछ फासले पर था, वहां भी एक कैंप था, वहां फौजी अफिसरों ने, ये जमीन के कीड़े भी होते हैं इंजीनियर लोग किस्म के, जमीन को जानते हैं, तोड़ना भी जानते हैं, सुरंग बनाना भी जानते हैं, तो वहां रांची के अफिसरों ने वहां सुरंग खोदी, और ऐसे सुरंग खोद करके 50 कदम पर जाकर के भाग गए वहां से, नीचे से रास्ता बना लिया, जब उन्होंने पता चला कि ये तो इस तरह से निकल गए, तो उन्होंने फौरन हुक्म जारी किया कि देखो जो ये जो केजेस है ना तुम्हारे, ये अफसर के अफसर जो है ना वो कॉर्नर पे नहीं होने चाहिए जहां सड़क नजदीक हो, कम से कम उनको बीच में कर दोगे, अगर वो सुरंग भी खोदें तो उन्हें कम से कम 2 महीने लग जाएंगे खोदते खोदते, इतनी उसकी लेंथ ही दो सुरंग की। वो आर्डर आया तो हमारे हजरत साहब जो जिस केज में थे वो भी सड़क के किनारे था, पर एक तरफ था, तो उस कर्नल ने फौरन आर्डर जारी किया कि ये जो ना इनको उठा के बीच में लाओ, हालांकि वो मकसद ये था कि ये कहीं सुरंग लगा करके निकल ना जाए, जैसे वो निकल गए वो मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ गए कैसे जहां पहुंचे, तो उन्होंने वो ये इनकी जवाबदारी होती है कि ये आदमी दो कहां से हैं, उन्होंने इनके केज को हमें आर्डर दिया कि तुम अपना बिस्तर बोरिया लपेटो, हम जो वहां रह रहे थे पहले, और यहां पर ऑफिसर आएंगे, हमने कहा शुक्र अल्लाह मैं यहां ऑफिसर आएंगे, तो उसके साथ ही केज था हमें उसके अंदर उन्होंने दाखिल कर दिया, और इनको ये केज खाली कर दिया, सफाई वफाई करवा के इनके लिए वह जगह बना दी। अब ये केज जो था ना सबसे करीब था मेरा एच केज, एच में हमें दाखिल कर दिया। ये 10 फुट का फासले पड़ता तकरीबन, 5 फुट की गैलरी थी, गुजरगाह थी उनकी, हिंदू गार्ड वालों की, और 5 फुट तकरीबन कांटेदार तार लगी थी, 10 फुट का फासला होता था, हाँ मामन सामने बैठते थे। तो ये आ गए कुछ दिन के बाद, फिर इन्होंने इनसे कहाँ रहा जाता था, इनका तो हेडक्वार्टर GHQ ये दूसरा था ये तसव्वुफ सलूक का पीछे हजरत जी बैठे हुए थे काम शुरू कराने में, ये इनको कहाँ चैन आए कि मैं इनके साथ रल, इनका अपना मिशन आकर के, ये दो एक कर्नल साहब थे इनके साथ, एक कैप्टन साहब थे और एक हजरत थे, और आकर हमारे ऐसे बैठ गए, दरी बिछारी के साथियों ने, और बैठ के हम सबको ऐसे बुलाया, तो हमारे जो केज के लोग थे कांटेदार तारों के पास होके बैठ गए। तो आपने बैठने के बाद सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के और उनकी हौसला अफजाई की, तमाम कैदियों की, सिपाही नीचे छोटे जहन के होते हैं, डीमोरल होते हैं, हौसला परेशान होते हैं, और तमाम मुल्क छूट गया, बच्चों का पता नहीं, और सारा हथियार डाल दिए, कैद में आ गए। इन्होंने सबसे पहले हौसला अफजाई की कि आप बेफिक्र हैं, हम बहुत जल्द अपने पाकिस्तान चले जाएंगे, और हम यहाँ बहुत थोड़े अरसे के लिए आए हैं, और कोई खास अल्लाह की मर्जी है, बस छोटा सा इम्तहान है। तो लोगों के दिल में बड़ी खुशी हुई कि अफसर हैं हमारे, अच्छी बात कर रहे हैं। उनका बस सिर्फ तुम्हें इसलिए करो कि थोड़ा सा ना यहाँ पाबंदी करो नमाज की, मैं आज आपको वजू का तरीका समझाता हूँ, और उसके बाद नमाज है आप पढ़ लिया करें, और इस तरह से मस्जिद बना लो छोटी छोटी अंदर, और नमाज पढ़ा करो बाकायदा, सब जानते हो इस बात को, अल्लाह को याद करो। और बाकी एक मिशन मेरे पास है, वो मैं आपको शाम को असर की नमाज के बाद बताऊंगा। हमने कहा चलो ये तो कमाल है, बाकी तो ठीक है, नमाज तो इन्होंने ठीक फरमाया, वजू का तरीका बताया, और अच्छा रहने को कहा, वापिस जाने कहा, एक मिशन और है ना, हमने समझा कोई वो हाईजैक कोई पार्टी इन्होंने बनानी है और वो कबाड़ा करेगी, हमने वो ठीक है वो मिशन सुनेंगे जरूर। असर की नमाज वाली इनका कमरा सामने था हमारे कांटेदार तार के साथ, उसमें कमरा जो इनको नमाज की मस्जिद बनाई हुई थी, हमने मस्जिद कच्ची ऐसे ईंटों की बना ली थी, बहुत पुराना, को 200-250 साल 300 साल 500 साल पुराना पीपल का दरख्त था, उसके नीचे हमने वो मस्जिद बना ली थी, बहुत पुराना है। उसके असरात से पता चलता था कि ये बहुत इलाका बड़ा और सुकून सा आता था वहाँ, और वहाँ एक और अजीब चीज होती थी कि असर की नमाज के बाद और मगरिब करीब दरमियान के अंदर है ना, पत्नी कहाँ से चिड़ियाएं उड़ के आती थी, हजारों की तादाद में, लाखों में कहते तो कोई बात नहीं है, और उस जो बहुत चौड़ा दरख्त था पीपल का, उस पर बैठ जाती थी, और वो बाद है ना असर के वक्त जिक्र करना, परिंदे भी जिक्र करते हैं दाऊद अलैहि सलाम के साथ, वो इन्होंने ऐसा जिक्र मचाना, शोर को मचाना उन्होंने सबने मिलकर उस पीपल के दरख्त में बैठ के, हजारों चिड़ियों ने, कि हमें एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो जाती थी, और इतनी रोजाना मजा है जब तक वो उसके नीचे हमने मस्जिद बनाई थी। तो वो ऐसी महसूस हुआ कि ये कोई हम ही नहीं, इंसानों को तो नसीब हो रहा है, चिड़ियों को जिक्र नसीब हो रहा है, अल्लाह के बंदे परिंदे जिक्र करते हैं रोजाना। बहर हजरत असर की नमाज के बाद अपना नमाज मस्जिद से निकले सामने से और बैठ गए, इलियास साहब भी साथ होते थे, और एक दो और भी अफसर को साथ होते थे, काफी अफसर का केज था इनका, काफी साथ हो गए थे, तो काफी दूसरी साइड पे भी थे, मुखालफिन भी थे, अपने अपने समझ है, जिसे अल्लाह ताला रखे उसे कौन चखे, जिसे अल्लाह ताला जिक्र का हिदायत दे तो उसी समझ आएगी, हरे को थोड़ी समझ चाहिए, ऑफिसर हो या कुछ भी हो। तो ये बैठ गए,
पहले से नहीं आती थी आपके जिक्र के बाद से आनी शुरू,
नहीं पहले से ही शायद हों,
पहले से
हों शायद, हम जब हमसे माँ दाखिल हुआ तो वो चिड़िया आ गई रोजाना, तकरीबन मगरिब के सूरज डूबने तक, मगरिब की अजान जब होती थी वो बंद खामोश जाती थी कितनी तादाद में। तो वो हजरत ने आ गए सामने बैठ गए, दो चार बातें बताई, उस बार हजरत जी रहमतुल्लाह के बारे में बताया कि हमारे उस्ताद हैं, इस किस्म के हैं, ये है, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, बैत हूँ, और वो इस किस्म की बात है, कोई जिक्र फिक्र भी एक चीज है नमाज के अलावा जो अल्लाह का कुर्ब अता फरमाती है। इन्होंने थोड़ा पहले दिन तो बयान चलाया, और बाकी दूसरे दिन मैं फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। दूसरे दिन फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सबक आगे चलाया, फिर लतीफा कलब बताया, फिर जिक्र का तरीका बताया, वहां बैठक में असर के बाद बैठ जाते थे, बताने के बाद उन्होंने कहा कि ये अगर काम करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत फलाकार है। अल्लाह ने हमें मामाया में इसी बात के लिए कबूल फरमाया है। और ये जो बलाएं हैं हिंदुस्तान का मुसलमान के दिल टूटे हुए हैं, बांग्लादेश के मुसलमान के दिल टूटे हुए हैं, हमारा वेस्ट पाकिस्तान के टूटे हुए हैं, दुनिया के मुसलमान जो दिल टूटे हैं, इतनी बड़ी बला हम पर पड़ी है, उस बला को दूर करने का यही तरीका है। तुम इंशाल्लाह तुम्हारे गम गलत हो जाएंगे। इन्होंने दो दिन बयान देकर फिर कहा अच्छा आज तैयार हो मगरिब की नमाज के बाद। हमने कहा जी तैयार हैं। हजरत से एक छोटी सी दलाइल छोटी थी हजरत की, पहला एडिशन वो इनके पास थी। और मैंने दूसरे दिन लेके और मैंने फटाफट उसमें रेड क्रॉस के नोटबुक पर 100 आदि दलाइल सुख मैंने छोटी थी वो मैंने नोट कर ली। उनका मुझे बस आज एक दिन के लिए है वो। मैंने कहा चलो यादव साहब मांगेंगे शाम को। मैंने एक दिन के लिए एक दिन मैंने पूरी वो नोट कर ली अपने नोटबुक के ऊपर दलाइल सुख की, खास खास जो थे सब्जेक्ट, फिर इनको वापस दे दी। तो उसके बाद वो सबक चल पड़े। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी वाकई कोई हस्ती है वो हमारी खासों को लिखी थी छोटा। तो हजरत ने फिर कहा मगरिब की नमाज बाद आओ। हजरत मगरिब नमाज बाद आ गए और आने के बाद ईशा के बाद मगरिब से मगरिब के बाद ईशा के बाद बल ईशा के बाद ईशा से भी आगे तक बात चलती थी, मेरी चल रही थी। जिक्र कराया हमें, जिक्र कराया तो हमें जो लज्जत महसूस हुई, या अल्लाह सुबह कब होगी, सुबह का जिक्र तहज्जुद में होगा, या अल्लाह सुबह ये तहज्जुद कब आएगी कि हम दूसरा जिक्र कराए हमें। उसके बाद इन्होंने फिर दूसरी एक ये अब ये सेंटर में आ गए थे। मैंने पहले अर्ज किया कि ये डी ब्लॉक सेंटर में था और 7 केजेस के अर्द गिर्द थे। इन्होंने फिर दूसरी केज से हटके दूसरे केज में भी यही रब्ता कर लिया जैसे हमसे किया, उनको भी टाइम दे दिया अभी मेरा जिक्र। फिर तीसरे केज से, फिर चौथे से, फिर पांचवे से, यानी चौतरफा ये बीच में एक जान पे दुख हजार। और इन्होंने सबको जिक्र कराना, एक बारी 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 सबको जिक्र कराना, इस तहज को जिक्र कराना। और तो फिर जो जिला पैदा हुई वो हजरत फरमाते हैं कि जरबे इलाही से ये कुफर टूटते हैं, ये बुत टूटते हैं, ये बलाएं टूटती हैं, इत्मीनान कलब होता है। तो जैसे कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है कर्बो बला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है कर्बो बला, ठीक इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम तब जिंदा होता है जब दिल जिंदा होता है। इस्लाम तो लबादा ओढ़े फिर रहे हैं हम सारे लबादे इस्लाम में हैं। दिल की कुलूब पर मेहनत, कुलूब जिंदा किसका है, कुलूब के ऊपर मेहनत हो रही है। ये एडवांस हरावल दस्ता पहुंच गया है वहां हिंदुस्तान में गम की घाटी में और पीछे हजरत तवज्जो फरमा रहे हैं। बस ये एक मिशन था जो किसी को नहीं नसीब हुआ हजरत से, जो मिशन कैद में इनको दिया गया, इन्होंने जो फिर वहां बूटा लगाया है और वहां जरबें लगवाई हैं और लगाई हैं, हैरान और परेशान होकर वहां से ये चीज अभी फैलान फूटा है। वो एक शायर भी कहता है पंजाबी में, पंजाब थोड़ा समझेंगे नहीं, एवें तो कीमत पैंदी नहीं कुछ दुख भी सहना पैंदा है, एवें तो कीमत पैंदी नहीं कुछ दुख भी सहना पैंदा है, कतरे नू मोती बनन लई कैदा में रहना पैंदा है। तो ये मिशन के कतरे को मोती बनाने के लिए हजरत ने मिशन अता इजाजत दी, अल्लाह ताला ने सबब बनाया। ये घाटी गमों की घाटी में हम जाके उतर गए, इतनी बला पड़ गई, किसी को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे, किसी को यकीन नहीं था पूरे मुसलमानों के 90,000 फौज कैद हो जाएगी, तारीख में ही था। लेकिन ये गम की घाटी इस तसुफ सलूक के अदा के लिए और हमारे सिलसिला अवेसी को जिंदा करने के लिए असल में ये गम दिया गया, जिसकी वजह से हजरत ने वहां ये बूटा लगाया और कलूब जिंदा, कलूब पर मेहनत की, कलूब पर मेहनत की। वो मेहनत यही नहीं हो तो रही थी गया के अंदर, लेकिन इसके साइक्लोन जो है ना आजकल जो जमाना दूसरा ना, सब समझते वेव्स, वो सारी दुनिया फैल रहे थे। इंडोनेशिया पे फैल गए, मलेशिया पे चले गए, बांग्लादेश पे चले गए, श्रीलंका पे चले गए और आगे जापान जावा सुमात्रा पर चले गए, इधर चाइना पर चले गए, इधर यूरोप की तरफ चले गए, उधर मिडिल ईस्ट की तरफ चले गए। इनके वेव्स, वहां के जो वेव्स पीछे से हजरत दुआ फरमा रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं और ये वेव्स को वहां प्लान तैयार कर रहे हैं और कल्ब की तामीर कर रहे हैं। उस कल्ब की जो मेहनत है ना, जो उठी है ना, अब सारी दुनिया पर छाती जा रही है। याद रखना, आप देख रहे हैं खुद बहुत इनका क्या, अब हिंदुस्तान से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, श्रीलंका से, ये जो वेव्स है ना वो काम कर रहे हैं, वो जो बूटा लगाया हुआ है और उस बूटे की वजह से ये सारा प्लान। फिर हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि ये मेरी जमात है, हजरत आप तकलीफ ना फरमाएं, ये मेरी जमात है, मैं रोजाना संभालता हूँ इन्हें, मैंने तवज्जो देता हूँ, मैं इनके हर मामलात में दाखिल होता हूँ, मैंने मेरी रहमत वाले खत लिखते हैं, आप लिख पढ़ लें हालात में और वो मामलत करते हैं और वो मदद करते हैं। जैसे रूहानी हजरत शाह साहब फरमाते हैं कि जब तक बेग साहब मजलूल अली हिंदुस्तान में रहे उस वक्त तक हिंदुस्तान के वलियों की ईद सईद थी। इसी की जो किताब है शायद ना, इसमें हजरत बेग शाह साहब का कौल जबत है लिखा हुआ है, ये ईद सईद थी जब तक बेग साहब हिंदुस्तान में रहे तो जितने वली अल्लाह ने ऐसे इनको छाए हुए थे उनके रूह हैं कि ये इस जमात को कलक ना पहुंच जाए। ये तो बहुत बड़ी सिलसिला अवैसे का जो बेस्ट बहुत बड़ा क्वालिटी का जो अवैसे का सिलसिला निकला है उनके खुलफा में से मिशन लेकर आए हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान के तमाम वली अल्लाह उनकी ईद सईद रही जब तक ये वहां रहे, इतने लुत्फानंदोजियां होती रही उनको रूहानी तौर पर। और अब भी मैंने कई बात बात सुना कि जब इतना बड़ा सिलसिला है कि जब ये शाम को मगरिब की नमाज के बाद हम कहते हैं ना साथी, पूरे पाकिस्तान में जमात फैली हुई है, हिंदुस्तान में दूसरे मालिक में, जब साथी अमीर जमात कहते हैं ना चले अहदियत, तो सौ सौ आदमी की डार, हजार हजार आदमी की डार, अब हम कितने आदमी बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी डार जब भी उठेगी तो आलम अरवा में तहलका मच जाता है। चले मुराक भाई अकरबियत, तो ये उठी ये रूहें, ये है वैसियत उठा करके मनाजिल आसमान बाला में है, मैयत पे अकरबियत पे जाके जब जाती हैं तो रूहें और दूसरे दीगर फरिश्ते हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी डारें कहां से आ रही हैं। ये वहां गुफ्तगू होती है रूहानी तौर पर कि एक अल्लाह यार खान साहब रहमतुल्लाह इस सदी के वो वली जर्नेल हैं जिनको ये सिलसिला आता हुआ और वो उठा उठा करके मनाजिल सुख तय करा रहे हैं। छोटा सा न समझना इस बात को, ये बात ही पहलू है। और हजरत के जब ये सब उठेंगे ना तो सारी रूहें उठ के ऊपर जाएंगी तो ये फरिश्ते भी हैरान हो जाते हैं कि ये कहां से है, ये टूटा हुआ तारा महे सारी न बन जाए, फरिश्ते भी हैरान है कि किधर से उठ उठ के ये आ रहे हैं मामला, उनके समझने से भी कासिर है। तो सिलसिला अवेसिया इसकी बड़ी शान है और ये हजरत के हमारे हिस्से में समान इस वक्त आया है। पहले भी अल्लाह गुजरे हैं, दुनिया गुजरी है, लेकिन इतनी पावरफुल इतनी कली कसीर तादाद में उड़ान नहीं हुआ किसी का। आप गनीमत जान लें मिल बैठने को, इस जमात मिल बैठने को गनीमत जान लें, मिल बैठने को जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है, जुदा हो गए तो फिर रोते रहो ना। ये चीज कमाई जिसने कर ली कुलूब की कमाई वो अल्लाह के फल से कमयाब नहीं रहेगा, बहुत ऊंचा जाने वाला रास्ता है। और इनको अल्लाह ने ही अल्लाह ने ही ये तरक्कियां अता फरमाई हैं, उसी का है सारा अमूर, उसी के सारे सिलसिले, उसी के सारे मामलात, उसी का सारा इल्म अलूम। तो इसलिए दरख्वास्त यही है कि हम ये मेरे तासुरात और ये दूसरे मामला एहसासात काफी मुझे तंग करते रहते हैं, मैं कभी कभी फूट पड़ता हूँ, ये फूटना भी ठीक नहीं है, पता नहीं अल्लाह ताला हिदायत में रखे हमें। तो इसलिए आपसे इतनी अर्ज है कि इनके कहे हुए को दोबाला समझें, यानी बहुत जबरदस्त समझें कि ये बार बार ना कहें, ना कहने की जरूरत पड़े। इस रास्ते को पकड़ लिया वो इंशाल्लाह बहुत कुछ पा गया। और ये अब आपने दी आगे फैलाओ, ये फैलाओ ना फैलाओ फैलाने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन अगर हमने कोशिश की तो हमारा उस शुमार नेकों में हो जाएगा। अपने इलाके में फैलाओ, नहीं तो वो फैला रहा है, उसके साइक्लोन चल रहे हैं। जो हजरत साहब ने गया में जिक्र कराया था ना, उस मुंबई के साइक्लोन चल रहे हैं और पूरी दुनिया को लपेट में ले रहे हैं। और देख रहे कहां कहां से लोग जिनको हम नाम निशान नहीं जानते थे वो आकर के आप मिल करके कहते हैं हमारे गांव में भी आओ, हमारे शहर में आओ, हमारे मुल्क में आओ, जुबान नहीं जानते, बात नहीं जानते, लेकिन चूंकि वो चीज बेदार कर रही ने, वो जो कलब की जो कुवत की थी ना, कलब की मेहनत, वो बार आवर हो रही है। बस मैं इतने
करते थे जेल का अफसर आपको कुछ
वो भी है कुछ कहते थे, लेकिन क्या करेंगे, ऊपर अल्लाह की ताकत भी थी। ये भी हालात सारी किताब है वो आप ले जाना साथ।
क्या कहते थे
वो? मैंने वो कहते थे मत करो, जनेवा कन्वेंशन के तहत ये मना है, पांच आदमी से ज्यादा इकट्ठे होना मना है, पीछे हटो, बंदूक ऐसे कही, जब ऐसे बंदूक की उस फौजी ने इंडिया वाले हमारे फौजी ने बंदूक पकड़ आप लोगों ने इधर रख ली। अब कहे क्या करेगा, अब मारू तुझे। अब वो भागा है एजेंट अपने कैप्टन के पास कि मेरी तो किताब मेरी तो बंदूक छीन ली उसने। वो जालिम क्यों बंदूक छीन ली तूने इसकी? उसने कहा इसलिए मुझे बंदूक क्यों दिखाई, हमको मिट्टी के बने हुए, हम भी तो फौजी हैं, हमने छीन ली। उनका बो वेल डन, बहुत अच्छा है तुम, बड़ा बहादुर है, कुछ भी कहो मैं तुम्हें बंदूक नहीं दूंगा। कहता क्यों नहीं दोगे, तुम्हारे कर्नल को दूंगा, जाओ बड़े अफसर को लाओ, ये तुम्हारे सिपाहियों की हालत है। वो कर्नल जो था डीपी प्रभाकर है ना हिंदुओं का नाम, देवानंद प्रभाकर को नाम, वो कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल था, रिटायर्ड था, ये फौजी रिटायर हो गए फिर दोबारा आ जाते अफसर। उसने बड़ी मेहनत की उस कैप्टन ने कि खुदा के लिए ये दे दो यार, ये सिपाही की कोटबाश हो जाएगा, इस बेवकूफी कर बैठा है। तो मैंने नहीं देनी, मैं तो कर्नल साहब को दूंगा, तुम्हारे कमांडेंट को दूंगा। उसने कमांडेंट को आखिर बता ही दिया कि ये केस हो गया है, कैदी ने हमारी बंदूक ले ली है। और उसने आकर के फिर उनका बड़ा, तुम तो बेवकूफ हो, तुमने क्यों छेड़ा इनको। उस वो जब आया जिक्र हो रहा था, उसका लिखा हुआ है किताब में, हालात असली गई है इंडिया में, अभी फिर ले जाना थोड़ी सी, तो उसमें ये वाकयात लिखे हुए हैं। तो उसने आकर के फिर वो ऐसे स्टिक मार के देखता रहा कि क्या कर रहे हैं, कि ये कर रहे हैं, भगवान का जिक्र कर रहे हैं, अच्छा भगवान की याद में लगे हुए हैं। उसने बताया उन्होंने अफसर, तो हम जब जिक्र हमारा खत्म हुआ, दुआ हुई, तो उसने बाकायदा कहा कि ये इन लोगों को मत छेड़ो, ये भगवान के दासी हैं। और मैंने देखा है रिटायर, मेरी उम्र काफी हो गई है 60 साल की, मैंने देखा है कि मुसलमानों के अंदर जो ये किस्म का जो ये है ना, ये अकीदा, ये जिक्र करने वाला, ये अल्लाह के यानी भगवान के दासी होते हैं, तो ये जब तक मेरे कैंप में है इन्हें कोई ना छेड़े, इनको करने दो जिक्र, करने दो। फिर हम 100-100, 200-300 इकट्ठे होकर आजाद जिक्र करा देता, हम करते थे, फिर हर कैंप शुरू हो गया था। तो अल्लाह की रहमत हुई है, ये यानी इसमें अल्लाह की तरफ ताकत भी है, वो खुद वो इसका संभालता भी है, इसको मना करने वाले को खुद चोटी से पकड़ता है कि तू कौन होता है मना करने वाला। मगर शर्त है कि हम हिम्मत वाले हो जाएं, और ये बहुत बड़ा अमल है, तो है ही, आप तो उलमा है, हम तो बल्कि आपको बताते हुए शर्मा रही है, तो इसलिए आप इस चीज को कुरान के अहकाम को कलब की ताकत कुवत को फैलाएं और करवाएं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु अलैहि।